नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां देश दुनिया की बड़ी खबरें। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक हालिया कार्यक्रम के वीडियो में आंसू पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उनके सख्त शासन और तानाशाही के लिए जाना जाता है। जब ये वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार आ गई कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो रोने लगे। किम जोंग उन के रोने की वजह उत्तर कोरिया में गिरती जन्म दर से निपटने के लिए महिलाओं से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो जब महिलाओं से ये अपील कर रहे थे तभी उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें नीचे देखते हुए और आंसू पहुंचते हुए देखा जा सकता है। दर्शकों में से कई लोग आंसू बहाते भी नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रविवार को प्योंगयांग में महिलाओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम का हवाला देते हुए बताया कि किम ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म दर में गिरावट को रोकना और बच्चों की अच्छी देखभाल करना हमारी सभी हाउसकीपिंग जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें महिलाओं के साथ काम करते समय संभालना है। उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने में भूमिका के लिए माताओं को भी धन्यवाद दिया। ब्रिटेन के आव्रजन मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने की सरकार की रवांडा नीति पर गहरी असहमति व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। जेनरिक को हाल तक सुनक के सहयोगी के तौर पर देखा जाता था। जेनरिक ने बुधवार को कहा कि उन्होंने महसूस किया कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली द्वारा संसदीय बयान में प्रस्तुत आपातकालीन विधेयक कानूनी चुनौतियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुनक ने उनके इस्तीफे पर कहा कि वो निराश हैं लेकिन पद छोड़ने का उनका तर्क स्थिति की बुनियादी गलतफहमी पर आधारित है। जेनरिक ने निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नकाल के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बेहद दुख के साथ मैंने आव्रजन मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने बुधवार को कहा कि वो खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के 15,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ विश्व शांति के लिए शुक्रवार को दुबई में एक सार्वजनिक ध्यान कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर को शांति स्थापना, आपदा राहत कार्य, गरीबी उन्मूलन और जलवायु कार्रवाई के जरिए उनके योगदान के बारे में भाषण देने के लिए COP28 में आमंत्रित किया गया है। रविशंकर ने यहाँ PTI भाषा से कहा कि वो खाड़ी सहयोग परिषद के देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के 15,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ विश्व शांति के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। दुनिया भर के लाखों लोग इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया और उसके बाद सऊदी अरब रवाना हो गए। पुतिन की इस एक दिवसीय यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन में उनके देश के युद्ध के मद्देनजर दो प्रमुख तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से समर्थन जुटाना है जिनका झुकाव अमेरिका की ओर माना जाता है। पुतिन अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। दुबई संयुक्त राष्ट्र की COP28 जलवायु वार्ता की मेजबानी कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अपनी वार्ता में बोलते हुए पुतिन ने ऊर्जा सहयोग, पश्चिम एशिया में संघर्ष और यूक्रेन संकट पर चर्चा करने की पेशकश की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के साथ रूस के संबंधों की वर्तमान स्थिति की प्रशंसा की और COP28 जलवायु वार्ता की मेजबानी के लिए देश को बधाई दी। पुतिन यूक्रेन पर युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद बुधवार को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर रहे हैं। अमेरिका के लास वेगास स्थित नेवादा विश्वविद्यालय परिसर में हुए हमले में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई जबकि चौथा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध लास वेगास स्ट्रिप से कुछ ही मील दूर हुए इस हमले के बाद बुधवार सुबह भारी संख्या में पुलिस बल विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा। उसने बताया कि हमले के वक्त छात्रों ने खुद को कक्षाओं में बंद कर लिया था। अधिकारियों ने एक संदिग्ध हमलावर के सक्रिय रहने को लेकर पहले चेतावनी जारी करने के लगभग 40 मिनट बाद उसका पता लगाया और उसके मृत पाए जाने की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने हमलावर की पहचान उजागर नहीं की है और उन्होंने हमले के मकसद का खुलासा भी नहीं किया है। ये गोलीबारी उस शहर में हुई जो अक्टूबर 2017 में मांडले बे कैसीनो में एक बंदूकधारी द्वारा किए गए हमले से अभी तक नहीं उबरा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।